सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की है और एक प्रयोग भी शुरू किया है कि यदि हम अपने जीवन को सचमुच अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने का निरंतर विचार भी करना चाहिए। विचारों की शक्ति, विचारों की सामर्थ्य बहुत है। विचार ही अगर दृढ़ हो तो वे हमारे आचरण को ऊंचा उठा सकते हैं। श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हमने जब ये विचार कर लिया था कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है तो फिर बताइएगा हमारे इस विचार की दृढ़ता ने हमें और हमारे देश को आज़ाद किया था कि नहीं किया। हम अगर विचार कर लेते हैं कि हमें बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़नी है तो हम अपने उस विचार को साकार करने के लिए अपने जीवन में, अपने आचरण में एक तब्दीली करते हैं और जुट जाते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं। उस एक विचार की शक्ति से हम अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। आचार्य भगवंतों ने हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस विचार की सामर्थ्य से हमें परिचित करवाया और बार बार विचार करने की इस प्रक्रिया का नाम भावना या कि अनुप्रेक्षा रखा है। इसको हमने पिछले दिनों समझा था कि अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन। हम जानते चले जाते हैं और अनुभव भी करते चले जाते हैं। जो हम जानते हैं वो हमारे अनुभव में आता है तो उसमें दृढ़ता आती है और जो हम अपने अनुभव से सीखते हैं वही हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। विचार तो सब उधार होते हैं लेकिन जब वे हमारे आचरण में बदल जाते हैं या कि उनके माध्यम से हमारे आचरण में परिवर्तन होता है तब फिर उस परिवर्तन से हमारे भीतर जो ज्ञान हासिल होता है वो हमें और अधिक आगे बढ़ने में मदद करता है। अनुप्रेक्षा हमारे भ्रम को तोड़ती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें ठीक ठीक मालूम नहीं होती और उन चीज़ों के बारे में हम एक भ्रम में जीते रहते हैं। अनुप्रेक्षा हमें वास्तविकता का बोध कराती है और हमारे भ्रम को तोड़ देती है। हम जिन चीज़ों को अपना मान बैठते हैं, जिन चीज़ों को शाश्वत मान बैठते हैं, जिन चीज़ों में हम सार्थकता देखते हैं, अनुप्रेक्षा हमें समझाती है, अनुप्रेक्षा हमें सलाह देती है कि एक बार गौर से फिर से एनालाइज करके देख लें कहीं ऐसा तो नहीं कि जो असार वस्तु है, जो सार्थक नहीं है, हम उसे सार्थक मान रहे हैं, और जो नाशवान है हम उसे अविनश्वर मान बैठे हों, और जो वस्तु हमारी नहीं है उसे हम अपना मान बैठे हों। कहीं इस भ्रम से हम अपना घाटा अपने हाथ से ना कर लें, क्योंकि अगर किसी चीज को जो हमारी नहीं है हम अपना मान लें तो मानिएगा एक ना एक दिन जिसकी है वो लेने आ जाएगा, और फिर हमें देना पड़ेगी तो हमें दुख होगा। सबको ये उधारण मालूम है कि धोबी के यहाँ से और एक व्यक्ति अपने कपड़े लेकर के और वहीं पहन करके और रास्ते से जा रहा था, और जब उसे मालूम पड़ा कि गलती से निशान तो लगा हुआ था उसके कमीज पर, लेकिन धोबी से भी गलती हो गई उस निशान को पहचानने में, और दूसरे की कमीज उसको दे दी और वो भी नहीं देख पाया ठीक से और पहन करके जा रहा। जब पहन के जा रहा है तब तो ये सोच रहा है कि कितने बढ़िया मेरे कपड़े हैं, और लोग देखें मेरे कपड़े कि मैं कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं। लेकिन जब पीछे से किसी आदमी ने आके कहा कि जनाब जरा सुनिएगा, धोखे से धोबी जी ने और आपको ये वाली हमारी शर्ट दे दी है, अब आप जैसा उचित समझें मुझे लौटाएं, अब क्या करें, वो वहीं के वहीं तो दे नहीं सकता हूं, तब फिर अब मैं आपकी शर्ट तो दे दूंगा लेकिन घर पहुंच करके दे दूंगा। अब वो व्यक्ति उस शर्ट को पहने हुए है लेकिन अब क्या विचार कर रहा है, कोई देख ना ले कि ये मेरी नहीं है, अभी तक तो सारी दुनिया देख ले कि ये मेरी है और कितनी सुंदर शर्ट है मेरी, और जैसे ही ये मालूम पड़ जाता है कि मेरी नहीं है तब मेरे थॉट्स और फीलिंग में कितने चेंजेस होते हैं। ठीक यही काम अनुप्रेक्षा करती है, तुरंत के तुरंत तो हम नहीं दे पाएंगे, घर पहुंचेंगे तब हम दे पाएंगे, तो अभी तुरंत के तुरंत तो हम हमसे जो चीजें भिन्न हैं उनको नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन कम से कम ये एहसास तो बना रहे कि ये चीजें मेरी नहीं है, ये चीजें नाशवान हैं। इस तरह यदि हम इन चीजों की वास्तविकता को जान करके फिर उनके साथ व्यवहार करें तो हमारा व्यवहार कुछ अलग होगा। जैसे हम जिस चीज को अपना मानते हैं उसके साथ हमारा व्यवहार कुछ और होता है, जिस चीज को पराया मानते हैं उसके साथ व्यवहार कुछ और होता है, जिस चीज को हम नाशवान मानते हैं उसके साथ हमारा व्यवहार कुछ और है, और जिस चीज को हम शाश्वत मानते हैं उससे हमारा व्यवहार कुछ और है। ये अगर हमें इस तरह का स्पष्ट ज्ञान हो जाए, इसको आचार्य भगवंतों ने साइंस ऑफ सेपरेशन या कि भेद विज्ञान कहा है। यह भेद विज्ञान की प्रक्रिया अनुप्रेक्षा सिखाती है। वास्तविकता से परिचित हो जाने पर फिर हमारी लाइफ स्टाइल अपने आप ही चेंज हो जाती है, और हम चाहते तो यही है कि हम भ्रम में न जिए, हम वास्तविकता को जान करके जिए। भ्रम में जीने पर थोड़ा बहुत सुख मिलता भी है लेकिन छिन जाता है, और छिनने पर अपार पीड़ा होती है, और वास्तविकता से पहले से मालूम हो तो हम फिर हर्ष विषाद से बच जाते हैं। अनुप्रेक्षा हमें वास्तविकता का बोध करा के हमारे भ्रम को तोड़कर अनावश्यक जो हर्ष विषाद है उससे भी हमें बचा लेती है। इतनी सारी चीजें इस अनुप्रेक्षा या की भावना या कहें विचारों की सामर्थ्य की है। हमने इस प्रयोग को अपने जीवन में पिछले कई दिनों से और लगातार करना शुरू किया है। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपने इस प्रयोग को शुरू किया होगा कि जब कभी जो चीज़ें नाशवान हैं उन चीज़ों के टूट जाने पर पहले हम दुखी होते थे, अब हमने दुखी होना छोड़ दिया है, मालूम पड़ गया है तो टूटने की चीज़ थी, टूट गई, ठीक है, मुझे सावधानी रखनी थी, मेरी तमाम सावधानी के बाद भी टूट गई है, तब फिर इसका तो स्वभाव है वैसा ही। ठीक इसी तरह से अगर संसार में हमें सुख ना मिले तब फिर हम और अधिक दुखी ना हो, एक तो सुख नहीं मिलता और दूसरा भ्रम है कि सुख मिलेगा, दो दो दुख, सुख मिलने का भ्रम हो और ना मिले तो दुख, और वैसे भी सुख नहीं मिला इस बात का दुख, तो सबसे अच्छा है ना कि हमने अपने अनुभव से जान लिया कि यहां पर सुख नहीं मिलता भैया, सुख मिलने का भ्रम होता है, यहां पर सुख के पीछे भी दुख ही छिपा हुआ है। स्वीकार कर लो ना, ऐसा स्वीकार कर लेने से, और फिर दुख आने पर हम पहले से ही हमें मालूम था कि मिलेगा, नहीं मालूम हो और मिले तो जरा मुश्किल होती है। अब हमने अपनी मुश्किल को आसान कर लिया है, मालूम है कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे थोड़ा तो सुख मिलेगा और उसके पीछे दुख भी मिलेगा। मेरी अपनी गुंजाइश हो तो ही करूं, और गुंजाइश नहीं हो तो काय को बेकार में अपने दुख का इंतजाम करूं। और सबसे बढ़िया मजा ये रहता है कि फिर दूसरे से शिकायत नहीं होती। जब दुख मिलता है तो मन तो ये करता है कि इससे उससे शिकायत करें कि देखो तो इस वजह से मुझे दुख मिला, नहीं फिर वो तो नेचुरल है, वो तो मुझे मिलेगी, मेरे अपने अंदर उसका कारण विद्यमान है, इसलिए मुझे दुख मिला है, किसी बाह्य निमित्त से मिला हुआ मालूम पड़ता है, पर वो मेरा भ्रम है, मेरे ही भीतर उस दुख का कोई कारण यहां इस संसार में मैंने निर्मित किया था, इसलिए मुझे दुख मिला। और जब भी मुझे दुख मिलता है तो मुझे लगता है कि कोई होगा जो कि दुख में मेरी मदद करेगा, मेरे दुख को दूर कर देगा। लेकिन हमने अपने अनुभव से पिछले दिनों जान लिया है कि नहीं भैया, अपना दुख अपना सुख अपने को अकेले अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई कितना हाथ लगाएगा बताइए, कहां तक। वो सिर्फ हमें एक सहानुभूति दे सकता है, सो हमें भी दूसरे के दुख में सहानुभूति और दूसरे के सुख में हर्ष तो व्यक्त करना चाहिए, लेकिन दूसरे से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारे हर्ष में शामिल हो और हमारे दुख को के समय हमें सहानुभूति दे। हमें जरूर एकत्व भावना ये सिखाती है कि मैं अपने सुख दुख को अकेले भोगता हूं और हर जीव अपने सुख दुख को भोगने के लिए अकेला है, यहां पर अपने जन्म मरण में भी वो अकेला है। ये बात ये नहीं सिखाती कि हम सबसे अलग थलग खड़े हो जाएं, ये बात सिर्फ इतना सिखाती है कि मेरी सहानुभूति सबके प्रति हो, क्योंकि यहां पर सबको अपना दुख अकेले भोगना पड़ता है और मैं दूसरे के सुख में भी साथ खड़े हों लेकिन दूसरे से अपेक्षा ना रखूं कि वो मेरे दुख में सहानुभूति व्यक्त करने जरूर आए या कि मेरे सुख में अपना सुख माने। ये सिखाती है एकत्व अनुपेक्षा। और आज हम उसी के दूसरे पहलू से विचार करने के लिए बैठे हैं। जीवन के दोनों पहलू हैं, एक विधियात्मक है एक निषेधात्मक पहलू है। ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ये मैं ये हूं मैं ये नहीं हूं, दोनों ही पहलू। तो कल मैं एक अकेला हूं और ये जो जो चीजें हैं, यहां तक कि मेरी देह और इस देह के सारे संबंध और इस देह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सारे भौतिक सुख सुविधा के साधन, ये भी मेरे नहीं है, ये मेरे से पृथक है, इनमें मेरे होने का भ्रम मुझे दुख देता है, इसलिए मैं उसमें से अपना मेरापन खींच लेता हूं। फिर भी ये रहेंगे क्यों के त्यों। हां अपन इन चीजों को अपना नहीं माने तब भी ये चीजें ज्यों की त्यों रहती हैं। तिजोरी ज्यों की त्यों रखी है, हम जबरदस्ती उसको अपना मानते, तिजोरी ने कभी अपन से नहीं कहा कि हम आपके, 100 रुपए के नोट ने कभी नहीं कहा कि जनाब आप कैसे ले रहे हो मुझे, मैं तो उनका हूं, नहीं। वो पट से अपन सामान लेने जाते तो दूसरे के हाथ में चला जाता वो 100 रुपए का नोट, वो मेरे तेरे के संकट में नहीं पड़ता, अपन मेरे तेरे का संकट अपने हाथ से मोड़ लेते, और इस तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठना सिखाती है ये अन्य तनुप्रेक्षा। और मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठ जाएं भैया तब तो जीवन कुछ और ही हो, हमारे जीवन का आनंद ही कुछ और हो। यहां तो हमने मेरे और तेरे के संक्लेश में अपने जीवन को इतना अधिक अपने हाथ से मुश्किल में डाल रखा है। कभी अगर अपन थोड़ा अनुभव करें जिसके प्रति हमारे मन में कोई मेरे तेरे का भाव नहीं है, एक सहज भाव है, उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है, उसके साथ बैठ करके कितना आनंद आता है, और जहां मेरे तेरे का भाव आता है वहां पर हम खुद कितनी मुश्किल महसूस करने लगते हैं, ये हम अपने जीवन के अनुभव से पहचाने। तो कुछ क्षण तो हमारे ऐसे हो जिनमें कि हम इस मेरे तेरे के प्रपंच से बच करके सब सबका है और कुछ किसी का नहीं है। नदी बहती है, मेरे घर के आगे से बहती है तो मेरी कहलाने लगती है, लेकिन है क्या वो मेरी? उसका जो जो पानी पिए वो सबकी है। मैं जबरदस्ती उस पर अपनी मालकियत आरोपित करके अपने दुख का उपाय करता हूं। मैं उसे सबकी रहने दूं और मेरा भी काम चलता रहे, इसमें क्या दिक्कत है? जब कांग्रेस की किसी कॉन्फ्रेंस में बापू पहुंचे थे प्रयाग इलाहाबाद, तो रुके नेहरू जी के यहां पर। सुबह रेडियो हाथ मुंह धोने के लिए एक लोटा पानी दिया गया, और पानी दिया गया लेकिन बातों में चर्चा में और हाथ मुंह पूरे नहीं धुल पाए और पानी खत्म हो गया। बापू को एकदम ध्यान आया कि ये क्या हुआ, रोज तो एक लोटे पानी में हाथ मुंह अच्छे से धुल जाते हैं और आज तो बातों में ध्यान ही नहीं रहा। तो थोड़े से चेहरे पर म्लानता आ गई, थोड़े से दुखी से महसूस हुए, तो नेहरू जी जोर से ठहाका लगा के हंसे कि बापू भूल जाओ, आश्रम में नहीं हो, प्रयाग में बैठे हो नदियों के संगम पर, काहे की पानी की यहां पर कमी जो आप इतने व्यथित हो रहे हो। तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया कि मेरा काम एक लोटे से चलता है, उतने पर ही मेरा अधिकार है, पूरी नदी पर जिस दिन मैं अपना अधिकार करूंगा उस दिन अपने आप दुख का उपाय करूंगा। नदी सबके लिए बहती है, मेरे लिए जितना आवश्यक है उतना ही मेरे लिए। ये क्या चीज है? ये अन्यत भावना है, अपन इसको ऐसे नहीं समझते। अपन तो वो पुरानी वाली भाषा पढ़ते हैं, जल पै ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे जिन धामा, क्यों भय मिल एक सुतरामा। पढ़ लिया, चलो घर हो गई, बारह भावना पढ़ लिया मैंने। नहीं भैया, इतने अकेले पढ़ने से अगर काम हो जाता तो अपन ने कितनी बार तो पढ़ ली पूरी बारह भावना जिंदगी में, अपन ने कितने दफे इस बात का पाठ किया होगा, लेकिन विचार कभी नहीं किया कि क्या सचमुच में ऐसा ही मान के चलता हूं। जो चीजें पर हैं उन पर मैं अपनी मालकियत अपना अधिकार आरोपित करके बेकार में दुख मोल लेता हूं, उनको मैं सबका मानू ना? मेरे लिए जितना आवश्यक है उतना मैं रख लू, उसको मैं अपना मानू तो मान लू, लेकिन परमार्थ से वो भी मेरा नहीं है। जिस घर में मैं रह रहा हूं उसका उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम से है, बिल्कुल ठीक है, मेरे दस्तखत है उसमें, वो मेरा है घर, लेकिन जरा सा विचार करें, जिस दिन मुझे यहां से जाना पड़ेगा उस दिन क्या मेरा घर मेरे साथ जाएगा? क्या नहीं जाएगा? यहीं पर रह जाएगा, कोई और रहेगा उसमें। मेरे से पहले मेरे पिता रहते थे और उनके पिता रहते थे, तो ज्यादा फर्क नहीं है किसी होटल या किसी सराय और मकान में मेरे, पर फिर भी मैं जबरदस्ती उसको अपनी छाती पर लादे फिरता हूं, वो यहीं छूट जाता है, मैं बेकार में अपने भीतर रख के जाता हूं। बस इतना ही करना मेरे को कि जब जाने लगूं तो ये मेरे भीतर मेरे साथ ना आ जाए, यहीं छूट जाए, है ना? आसान सा तरीका, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अपन ने बना लिया है कठिन। वो अपने आप छूट रहा है यहीं के यहीं, वो हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे अपने परिणामों में, हमारे अपने भावों में हम उसको लेके चले जाते हैं कि क्या घर था मेरा, क्या बढ़िया था और आज मुझे छोड़ना पड़ रहा, क्या संपत्ति मेरी, मुझे सब छोड़ के जाना पड़, शरीर अब तो ये शरीर भी मेरा छूट जाएगा, मेरे मरण का समय निकट आ। ऐसा विचार करके दुखी होना चाहो तो दुखी हो लो, और अगर आनंद पूर्वक अपनी आगे की यात्रा करनी चाहते तो कर लो कि ठीक है बढ़िया था मैंने इसमें रहा मैं और आनंद पूर्वक रहा, अब जब मैं जा रहा हूं तो इसे थैंक्स धन्यवाद, बहुत दिन तक रहे आपको धन्यवाद, अब आप कोई और रहेगा मैं तो जा रहा हूं। ऐसा बहुत कठिन है, जिंदगी भर साधना करने के बाद फिर कह पाएंगे ऐसा कि हां सी ऑफ कर रहे हैं जा रहे हैं और प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं, जब तक रहे तब तक भी इसमें प्रसन्नता पूर्वक रहे, व्यवहार से मैं इन सब पर पदार्थों को एक मान करके इनका सिर्फ उपयोग करता हूं, परमार्थ से जानता हूं कि ये मेरी नहीं है, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक इनको छोड़ने का साहस करता हूं। वास्तव में चीज उसी की है जो उसे दूसरे को दे सके, वरना सब उस चीज के मालिक नहीं है। आपने कभी घटना सुनी, एक चोर किसी के घर में घुसा और वो तो बिल्कुल फक्कड़ आदमी था, उसको तो मालूम नहीं था कि, लेकिन वो बड़ा प्रसन्न रहता था
तो चोर को यह लगा कि इतना प्रसन्न आदमी है, इतनी खुशी से रहता, मतलब बहुत मालटाल होगा इसके पास में। तो घुस गया वो, वहां पर देखा तो कुछ भी नहीं, यहां वहां ढूंढा ढाड़ा। अब वो जो मालिक था घर का, वो भी चिंतित। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है, अपन तो चिंतित होते हैं कि कुछ ले ना जाए, और वो इस बात के लिए चिंतित था कि क्या ले जाएगा, काहे को आया बेकार, परेशान हो रहा है यहां, इसके लिए चिंतित था वो। और मालूम फिर वो चुपचाप लेटे लेटे, जब ये खाली हाथ लौट जाएगा क्या करूं मैं, उठ करके बैठ गया। जैसे उठ के बैठा तो चोर को मालूम पड़ गया कि मालिक जाग गया, तो वो पीछे छुप गया। इसने कहा, सुनो, छुपने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमने अपने हाथ से मुसीबत मोड़ ली, थोड़ी खबर करके आती तो हम इंतजाम करके रखते। हाँ, अब तुमने बिल्कुल भी खबर नहीं की कि हम आ रहे हैं, अब यहां थोड़ी इतना रखा हुआ है, हमको तो दिन भर के लिए जितना चाहिए उतना खा पी लिया और खत्म, जोड़ के रखने की अपनी आदत नहीं है, तुम थोड़ा बता देते तो दो पांच रुपए तुम्हारे लिए बचा के रखते। फिर भी अब तुम आए हो तो खाली हाथ मेरे यहां से लौट जाओ, उसमें तो मुझे पीड़ा हो, देखता हूं कुछ होगा जो तुम्हें नहीं मिल रहा। और जाकर के अलमारी में यहां वहां ढूंढता है, कभी किसी ने उसको उपहार स्वरूप कुछ राशि दी थी, वो कागजों के नीचे पड़ी हुई थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया, भूल गया था, वो कागज में टटोलते टटोलते एकदम उसको 10 रुपए का नोट मिल गया। अरे ये तो बहुत समय से किसी ने दिया था, पड़ा था, ध्यान ही नहीं था, ये ले लो, तुम खाली हाथ मत जाओ। और जब वो जाने लगा तब विदा करते समय, और जैसे ही बाहर निकला तो हवा का बहुत सर्द झोंका आया, तो उसको लगा कि अरे इतनी ठंड में बाहर ये जाएगा, परेशान हो जाएगा। उठा करके अपना जो कंबल लपेटे था वो भी उससे उड़ा दिया कि ले जाओ। उस चोर ने अपने जीवन के संस्मरण में लिखा कि जिंदगी भर जिनके यहां चोरी की उनको मैं साहूकार समझता था, लेकिन वे सब तो चोर थे, आज मुझे साहूकार मिला जिसने कि मुझे देने की कोशिश की। जो वास्तव में साहूकार है, जो अपना समझता किसी चीज को वही दे सकता है, जो पराई है उसको तो जोड़ जोड़ के रखता है, किसी को दे ही नहीं सकता। भाई ये तो एक उदाहरण है, ये उदाहरण आगे बढ़ाऊं तो इसके आगे बहुत बड़ी घटना है, वो पूरी की पूरी। वो मुश्किल में पड़ गया था, 10 रुपए और कंबल ले जाकर के सारी रात की, ऐसे व्यक्ति के यहां से लेके आया तो वापस लौट के आया था, लेकिन दरवाजे पे खड़े होके जब भीतर का दृश्य देखा तो चरणों में गिर गया था उस आदमी के। मालूम वो व्यक्ति क्या कर रहा था, वो खिड़की में बैठा हुआ आंसू बहा रहा था और कह रहा था कि आज मेरे घर कोई आया और मेरे पास उसे देने लायक कुछ भी नहीं था, व्यर्थ है मेरा जीवन। चंद्रमा की तरफ देख के कह रहा था कि आज ये इतना सुंदर खिला हुआ चंद्रमा मेरे पास होता तो मैं उस व्यक्ति को ये भी दे। बताइए, ये इस चीज से हमें क्या शिक्षा लेनी। हम चीजों को अपना मानते हैं, माने व्यवहार से वे सब हमारी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक दिन हमें यहां छोड़ करके अपनी यात्रा करनी पड़ती, यानी कि वे पर भी हैं, वे मेरी भी हैं और वे मेरी नहीं भी हैं। वे मेरी हैं इसलिए मैं उनका उपयोग करूं सिर्फ, लेकिन वे मेरी नहीं हैं इसलिए मैं कोई और अगर उनका उपयोग करता है तो उसे दे सकूं और हर्षपूर्वक दे सकूं, कोई विषाद ना करूं। इतना सा सीखने में कई जिंदगियां लग जाएंगी, बात करने में तो पन्ने 2 मिनट में कर दी, इतनी जल्दी नहीं आएगी, कई जिंदगी साधना करनी पड़ेगी तब आएगी ये बात। आसानी से हम पर पदार्थों को पर मान करके छोड़ सकें और कोई संक्लेश मन के भीतर ना हो, और जोड़ते समय भी ये भाव बना रहे कि ये तो मेरे से पृथक हैं, मैं तो इनसे अलग स्वभाव वाला हूं, ये अलग स्वभाव वाली हैं वस्तुएं, ये जड़ हैं, मैं चेतन हूं,
राग द्वेष परिणाम भी मेरे नहीं हैं, वे मेरे विकारी भाव हैं, मेरा तो वीतराग स्वभाव है, ये बात मेरे मन में बनी रहे। और राग द्वेष चूंकि मेरी ही आत्मा में होते इसलिए कथनचित मेरे भी हैं, पर वो मेरा स्वभाव नहीं है। ये बात जो है मन के भीतर और बहुत स्पष्ट हो, तब जाकर के और हमारे जीवन को हम ऊंचा उठा सकते हैं इस संसार के राग द्वेष और इस संसार के प्रपंच से। जो जितना पृथक है वही उतना आनंद में है। आप अपने जीवन के अनुभव से इसको परख के देख लें, मैं कह रहा हूं इसलिए मान न लें आप। जिन क्षणों में जितना कम राग द्वेष का दबाव अपने ऊपर होता है उतने अपन सहज और मुक्त अनुभव करते कि नहीं करते, उतना अपने आप को तनाव से मुक्त महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्षण अपने जीवन में हम लाने की कोशिश करें। 24 घंटे अपने पराये के खेल में हम उलझे रहते हैं, ये अपना ये पराया। सुबह से शाम तक कोई थोड़ा सा समय तो हो जिसमें कि सब अपना और सब पराया, कुछ भी अपना नहीं, ऐसा भाव अगर मन के भीतर घंटे भर को भी आ जावे, हम तो कह रहे घंटे भर नहीं थोड़ी से क्षणों के लिए भी आ जावे, तो उसका आनंद ही अलग है। एक वृद्ध और एक वृद्धा बहुत आध्यात्मिक थे, उनकी प्रसिद्धि थी कि बड़े अध्यात्म प्रेमी हैं वो, और जब वे वचन का सुनने प्रवचन सुनने जा रहे थे, रास्ते से पैदल जाते थे, रास्ते में वृद्धा माँ तो पीछे पीछे रह जाती थी, वृद्ध पुरुष थोड़े 10 कदम आगे चलते, और अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते में किसी के सोने के सिक्के गिर गए, और जैसे ही ऐसा देखा तो मन में विचार आया कि मुझे तो ज्यादा सोने के प्रति आसक्ति है नहीं, लेकिन क्या कह सकते हैं, वृद्धा हैं, भले ही वृद्धा अवस्था आ गई लेकिन सोने चांदी के प्रति तो थोड़ी आसक्ति रह सकती है, इसलिए मन गड़बड़ा ना जाए इसके ऊपर धूल डाल दूं, ऐसा विचार करके। और जल्दी से जब तक कि वृद्धा माँ आए, उन्हीं की जीवन साथी थी उन वृद्ध पुरुष की, जब तक वो आए तब तक इनने धूल डालना शुरू की, और वो आ भी गई। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे मैं तो आपको बहुत अध्यात्म में पहुंचा हुआ मानती थी, अभी तो आपको सोने और धूल में फर्क नजर आ रहा है, धूल पर धूल डाल रहे हैं आप। बताइएगा क्या ऐसा भाव आ सकता है, तिजोरी में रखे पैसे भी धूल के समान ही हैं, ऐसा भाव, और हैं तो कीमती इसलिए तो संभाल के रखा हूं। सांसारिक सुख पाने के लिए वास्तविक सुख जिस दिन पाना होगा उस दिन इनसे मुक्त होना पड़ेगा, इनको धूल मान करके छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि धूल को छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही जिस दिन इनको छोड़ना है मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, उस दिन समझना कि अब ये मेरे लिए धूल के समान होगा, धूल होगा, ऐसा नहीं समझना। सोने और धूल में फर्क तो है, लेकिन सोने में हम कीमत डाल देते हैं इसलिए उसमें फर्क हो जाता। जिस दिन हम उसमें से मेरापन और उसकी वो जो कीमत है खींच लेते हैं, उस दिन तो वो भी मिट्टी में पड़ा हुआ उसी के समान रह जाता है। इतनी साधना जो है वो अपने जीवन में अपने परिणामों के माध्यम से हम चाहें तो कर सकते हैं, बहुत करते भी हैं अपन। कई चीजें हैं जिनको कि अपन अपना नहीं मानते, जिन चीजों से हमें दुख मिलता मालूम पड़ता है उन चीजों को हम जल्दी से भैया ये दूर ही रखो इसको, इससे तो तकलीफ होती। कितनी भी अपनी चीज हो लेकिन वो अगर हमें दुख देने लगे तो उसे भी हम हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही जो चीजें हमारे पास हैं वे भी मुझे सुख नहीं देंगी, उनसे भी एक ना एक दिन मुझे दुख मिल सकता है। इसलिए इससे पहले क्यों ना मैं अपनी दृष्टि को ऐसा बना लूं कि जब ये चीजें मेरे से पृथक हों, पृथक तो हैं ही, जब ये मेरे से जुदा हो जाएं, विलग हो जाएं, तब भी
मेरे साथ है तब तक ही मुझे अशांति है। ये पर पदार्थ जब तक मैं इनको अपना मान के चल रहा हूँ तब तक ही मुझे अशांति है। अगर मैं इस दाह ज्वर से मुक्त हो गया तो एकाकी होकर के विचरण करूंगा, दैगंबरी दीक्षा ग्रहण करूंगा।
ऐसा जो है भाव अपने मन में आ जावे, शरीर मेरा है ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शरीर मेरा नहीं है ये बात भी मुझे उतनी ही सच्ची लगनी चाहिए जितनी सच्ची ये लगती है कि शरीर मेरा है। बस इतना ही है, ये दोनों एक जैसी लगने लगे। शरीर मेरा है ये कितनी सच्ची लगती है, कोई भी नहीं झूठ ला सकता इस चीज को, लेकिन ये मेरी नहीं है ये शरीर, ये भी बात उतनी ही सच्ची है। इसकी मैं कीमत करता हूं, इससे मैं उपयोग इस करके इसका मैं अपने जीवन का कल्याण भी कर सकता हूं और इसी के माध्यम से अपना पतन भी कर सकता हूं। ये तो सिर्फ मेरे लिए एक माध्यम है, ये मेरा नहीं है, मैं इसमें रहता जरूर हूं। ऐसा भाव अगर आ जावे तो इसके छोड़ने में भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। देखिए अपन किस चीज का महत्व देते हैं, क्या अपने शरीर का महत्व देते हैं क्या? इस शरीर को ही अपन अपना मानते तो रहते जीवन भर, लेकिन अपना कोई सगा संबंधी जब मरण को प्राप्त हो जाता, इस शरीर में से वो निकल के दूसरी जगह चला जाता, तब इस शरीर को हिफाजत से रखे रहते हैं क्या? क्यों, ये उसी का तो है, आपने तो जिंदगी भर माना इसी को, फिर अभी अब क्यों ये मान रहे हैं कि ये नहीं है, ये हटाओ उसको, बदबू आने लगी इसमें से जल्दी से हटाओ। कल तक जिसको एक क्षण भी अपने से विलग करने में तकलीफ होती थी, आज उसी को कह रहे हैं कि हटाओ। नहीं, इसके भीतर जो था वो था कीमती मेरे लिए, ये थोड़ी कीमती, ये चीज अगर समझ में आ गया, ये तो पर ही है, वो जो इसमें था वो जरूर मेरा था। गलत तो नहीं कह रहा हूं, अभी तो अपन सोच रहे थे कि गड़बड़ बात है, शरीर मेरा नहीं है क्या, है तो मेरा ही तो है। नहीं, ये जितना मेरा है उतना ही मेरा नहीं भी है, दोनों ही चीज है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊं, शायद बात समझ में आ जाए और बस पूरी भी हो जाएगी बात। वैसे तो पूरी कभी नहीं होएगी जब तक कि अपन उसको अपने जीवन में नहीं उतार लेंगे। बातों के जमा खर्च से कुछ नहीं होता ज्यादा, वो तो चलता रहता है, पर पता नहीं कौन सा विचार अपने जीवन को परिवर्तित कर दे, इसलिए रोज रोज बैठते हैं भैया और विचार करते हैं, है ना। तो क्या हुआ, एक मूर्ति बेचने वाला मूर्तियां लेके गया था राजा साहब के पास में, और सब तीनों मूर्तियां बहुत सुंदर थी, एक से बढ़कर के एक सा कलर, एक सा शेप, साइज, सब कुछ भी, ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ी हो छोटी हो, ऐसा भी नहीं, सब एक जैसी। और कीमत जब पूछी गई तो एक की कीमत 5 रुपए, दूसरी की कीमत 25 रुपए और तीसरी की कीमत 100 रुपए। अरे ये डिफरेंस कैसे भाई कीमत में, ये 5 रुपए की कीमत की है और ये बिल्कुल ज्यों की त्यों, ये 25 की और ये 100 रुपए की। कारण क्या है इनके कीमत के अलग अलग होने का? सबने खूब गौर से उठा उठा करके वजन भी लेके देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा भारी वाली हो इसलिए महंगी है। नहीं, तीनों का वजन भी बराबर है, कलर भी, सब कुछ। अब समझ में नहीं आया तो राजा ने कहा कि मैं तो सब खरीद लूं तुम्हारी, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि इनकी कीमत अलग अलग क्यों। उसने कहा कि मैं आपको वो तो बताऊंगा, लेकिन एक बात और दे दूं आपको थोड़ी सी, आप तीनों खरीदने का कह रहे हैं तो आप अगर 100 रुपए वाली खरीदेंगे तो दोनों फोकट में दे दूंगा। राजा ने कहा ये तो और ज्यादा मुश्किल बात हो गई कि इतनी प्यारी मूर्तियां और इनको तुम ऐसे ही दे दोगे। उसने कहा हाँ, इसका कारण है, एक तार लेके आओ। तार लेकर के जब आए और तार को 5 रुपए वाली मूर्ति में से डाला कान में से, तो इसमें से उसमें निकल गया था आर पार, इसकी कीमत 5 रुपए स्पष्ट है। और दूसरे वाले के कान में से डाल करके मुंह में से निकल गया था, इसकी थोड़ी कीमत है 25 रुपए, और तीसरे वाले के कान में से डाला था तो भीतर चला गया, बाहर नहीं आया, कुछ भी सब एब्जॉर्ब हो गया, सब पच गया। इसकी कीमत किसकी कीमत है? इनके शरीर की कीमत है या उनकी क्वालिटी की कीमत है? क्यों, शरीर तो इनका सबका एक सा, रूप रंग सब एकदम बढ़िया, कीमत किसकी है? उनके भीतर जो गुण है उन गुणवत्ता की कीमत है। मेरे अपने जीवन में मैं शरीर को अपना मानता हूं, इस शरीर की कीमत नहीं है। ये शरीर कीमती तब होता है, ये शरीर पूज तब होता है जब मेरे गुण बढ़ते जले जाते हैं, तब इस देह की भी पूजा होने लगती है। सो तो जब भगवान की पूजा करते हैं तो यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम, जिसने शांति के और अच्छे अच्छे परिणाम परमाणु थे उनसे मिलकर आपकी देह बनी है, इसलिए आपके जैसा सुंदर और कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि जितने थे वो आपकी देह बनाने में लग गए, ऐसी भगवान की देह की पूजा करने लगते हैं। क्यों करते हैं? वो देह कैसे कीमती हो गई? उसके भीतर बैठी हुई चेतना की निर्मलता से। तो भैया अन्यत्व भावना हमें इतना ही सिखाती है कि देह को हम अगर अपना माने तो ध्यान रखें कि इस देह में बैठे हुए चेतना को ना भूल जाएं, इस अपने पराये के मेले में अपने स्वभाव को ना भूल जाएं, अपनी निजता को ना भूल जाएं, ऐसा ना हो कि पर पदार्थों के बीच मैं अपने निजत्व को भी खो बैठूं, मैं अपनी वास्तविकता को भी भूल जाऊं, पर वस्तुओं को ही अपना मानता रहूं, हैं वे मेरी पर वे मेरी वास्तव में नहीं है, इस तरह की अनुभूति, इस तरह की भावना निरंतर बनी रहे, तो हमारा जीवन हम जरूर धीरे धीरे अनाशक्त होकर के अच्छा बना सकेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला। स्वभाव शिव के निष्कंटक तक में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तक करते हो, संपारस पान पिया करके सुख दुख दोनों की गलियों में।
बात कही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए इस रूप में कि वो फन वो प्रणाम फन को है वो सांप को होता है। इस कविता में भी मिलता जुलता मामला है कि सांप सोचता है कि ये प्रणाम तो मुझको है, ये प्रणाम तो मुझको है। यही भावना अलग ढंग से मेरे मन में आई थी। और सारे जितने भी हमारे भगवान हैं उन पर कोई ना कोई चिन्ह है और उसमें अधिकांश चिन्ह जानवरों के हैं, तो इस कविता में सारे जानवर एक बार विद्रोह कर देते हैं और वैसा ही उनको लगता है कि वास्तव में भगवान तो हम हैं और ये जो ऊपर जो सब दिखता है वो सबके पास एक जैसा है और उसमें कोई खास बात नहीं है, वो तो उत्साह है, उनका तो ये उत्साह है और हम जो है वो भगवान है। छोटी सी एक तीन साढ़े तीन चार मिनट की होता है। एक बंदर वन तीर्थ में पहुंच गया। महाराज जी उसके पहले एक छोटी सी आदमी थी, मैंने महाराज जी को जब वहां इंदौर में समाक्षर मंदिर में जब पर्यंतों को प्रणाम करते हुए भक्ति करते हुए और वहां देखा कि तब मुझे लगा कि यहां भगवान यहां महाराज हैं और यहां हमारे भगवान हैं। तब मुझे लगा कि जो पांच नमोकार की पांच पंक्तियों में से दो पंक्तियां भी हैं एक दूसरे के सामने, तो मुझे लगा कि नमोकार यहां घटित हो रहा है। उस पर एक छोटी सी टिप्पणी है कि आज मैंने महामंत्र नमोकार की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति, आज मैंने नमोकार की एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति की साक्षात वंदना करते हुए देखा। नमोकार साक्षात हो रहा, दूसरी पंक्ति की साक्षात वंदना करते देखा। अनंत प्रसन्न मूर्तियों में मग्न थे, अनंत प्रसन्न मुद्राएं मूर्तियों में मग्न थे, साधुगण साधना की प्रतिपूर्ति में मग्न थे और भव्य दृश्य के आस्वादन में संलग्न थे। अरिहंतों में सिद्धि का प्रदीप्त आभा मंडल था, अरिहंतों में सिद्धि का प्रदीप्त आभा मंडल था, साधु संग पाथेय रूप पिछी थी कमंडल था। दो मूर्तियां एक दूसरे को संदर्भ देकर समृद्ध कर रही थी, कविता की दो मूर्तियां एक दूसरे को संदर्भ देकर समृद्ध कर रही थी। भक्ति और सिद्धि के रंग आपस में मिलकर रंगारंग इंद्रधनुष बन गए थे। सरोवर ने समाज ने सरोवर में अपने नीली आंखों से देखा, कमल की एक पंखुड़ी दूसरी में खुल रही थी और आनंद के अश्रुओं से हर आंख धुल रही थी। एक बंदर वन तीर्थ में पहुंच गया, एक बंदर वन तीर्थ में पहुंच गया, तीर्थंकर प्रतिमाओं को उसने देखा भाला और गौर किया भक्तों का आना और जाना, प्रणाम की मुद्राओं में स्तुतियां गाना। वो बहुत उत्तेजित हो और उत्तेजित लौटे हुए बंदर ने तमाम जानवरों की सभा बुलाई, उत्तेजित लौटे हुए बंदर ने तमाम जानवरों की सभा बुलाई और कहा सुनो, पहाड़ी के मंदिर में जितने भी देव हैं उन पर हम लोगों की शक्लें बनी हैं, उन लोगों पर हम लोगों की शक्लें बनी हैं, भक्तजन हमारी शक्लों से पत्थर को पहचानते हैं और उसे देवता मानते हैं। बैल को देखकर आदिनाथ की जय, हाथी को देखकर अजितनाथ की जय, गैंडे को देखकर श्रेयांश और बकरे को देखकर कुंतनाथ की जय बोलते हैं। मेरा विश्वास है कि हमारी वे शक्लें ही मूल देवता हैं। मेरा विश्वास है कि हमारी वे शक्लें ही मूल देवता हैं और शेष मानव धर्म मात्र उपसर्ग। वहां सूअर से ही कछुए से लेकर घोड़े और हाथी हैं, हिरण है, मगर है, सांप है, सिंह है, सभी साथी हैं। हां जिन मूर्तियों पर शक्ल नहीं है उन्हें भक्त प्रणाम नहीं करते, जिन मूर्तियों पर हमारी शक्ल नहीं है उन्हें भक्त प्रणाम नहीं करते हैं, यानी देवताओं को अस्मिता प्रणाम करते हैं। पत्थर भगवान बन बैठे हैं हमारी ही छाप से, भगवान बन बैठे हैं हमारी ही छाप से और संसार चला रहे हैं वरदान और शाप से। मेरा प्रस्ताव है कि अपने अपने चिन्हों वाली देव संज्ञाएं हम स्वतः अंगीकार करें। मेरा प्रस्ताव है कि अपने अपने चिन्हों वाली देव संज्ञाएं हम स्वतः अंगीकार करें। सारे जानवरों ने अपनी अपनी शैली में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। तो बंदर ने कहा, तो आज से हाथी बना जितना और मारे शेर घोड़ा संभोनाथ बन गया। सुगर समय का फेर, शूकर विलुंदेव कहना मान कर वो पैसा, अनुमंडल कहना वासु पूज्य भैसा। कल से हम सब जाकर मंदिर में अपने अपने स्थानों पर बैठे बैठेंगे और भक्त वत्सल मुद्रा में श्रावक जो आएंगे उनको आशीष। दूसरे दिन वे सब मंदिर में पहुंच अपने अपने चिन्ह वाली मूर्तियों के निकट बैठ गए। कुछ समय बाद वहां दो भक्त आए, पर दूर से ही इतने जानवरों को मंदिर में देखकर दूसरे दिन कुछ समय बाद वहां दो भक्त आए पर दूर से इतने जानवरों को मंदिर में देखकर भाग गए। फिर एक भक्त आई, वह इस भव्य दृष्टांतर से मूर्छित हो गिर गई। शेर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं इसे खाऊंगा। शेर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं इसे खाऊंगा। बंदर ने आंखें तरी, सावधान, इस समय आप महावीर हैं। शेर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं इसे खाऊंगा। बंदर ने आंखें तरी, सावधान, इस समय आप महावीर हैं और कभी खा लिया आज नहीं। बंदर ने कहा, धैर्य धरो, भूख तो मुझे भी सता रही है, धैर्य धरो, भूख तो मुझे भी सता रही है, पर इस समय हम देवता हैं, जानवरों जैसे मत बनो। भूख तो मुझे भी सता रही है, पर इस समय हम देवता हैं, जानवरों जैसे मत बनो। इतने में एक साधु वहां आया, जानवरों को देख क्षण भर को ठिठका, फिर मूर्तियों को लेकर चला आया। सामने इतने में एक साधु वहां आया, जानवरों को देख क्षण भर को ठिठका, फिर मूर्तियों के निकट चला आया। उसने मूर्तियों को प्रणाम किया, साधु ने मूर्तियों को प्रणाम किया और जानवरों ने डांड उठा उठाकर उसे उसने मूर्तियों को प्रणाम किया और जानवरों ने डांड उठा उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। साधु जब दर्शनों के बाद जाने को हुआ, बंदर ने उसे रोका, हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, क्या तुम्हारे देश हैं? हम सब तुम्हारे देवता हैं, हम सबको भूल जाएंगे, बोलो। साधु ने कहा, न मेरे पास भोजन है, न मेरे आराध्यों को भूख लगती है, न मेरे पास भोजन है, न मेरे आराध्यों को भूख लगती है, न तुम मेरे देवता हो और अपना आशीर्वाद भोजन के मूल्य पर दिए गए जाने की चीज है। भोजन के मूल्य पर दिए गए जाने की चीज है। बंदर ने बहस की, अगर हम नहीं है देवता तुम्हारे, तो तुमने हमारे रूप मूर्तियों पर क्यों तुलवाए? अगर हम नहीं है देवता तुम्हारे, तो तुमने हमारे रूप मूर्तियों पर क्यों तुलवाए? ओ यह बात है, साधु ने कहा, ओ यह बात है, देखो भद्र बंदर, बंदर नहीं अभिनंदन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो केवल एक गौण संबोधन सुविधा है, पुकारने और पुकारे जाने की। नई पत्थर हमारे देवता हैं, नहीं खुदे हुए जानवरों का हमारी आराधना से संबंध है। ये तो प्रतीकों को पहचान के लिए नंबर में डालकर आकृतियां बनाती गई हैं। बंदर ने अपमानित होकर कहा, तो देखिए ये उसका उसका बहस कैसे है कि जानवरों को तो खुदा दिया,
तो इस्तेमाल करें।
चिंतन आदमी नहीं है, बंदर ने अपमानित होकर बहस की, तो आपने आदमी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया प्रतीकों पर छाप कर? क्या हमें फालतू समझा गया है? नहीं, यह बात नहीं है। आप सबकी बहिरंग विभिन्नताएं, आप सबकी बहिरंग विभिन्नताएं तीर्थंकरों को चीनने में उपयोगी है। आदमी कभी नहीं पा सकता यह मात्र, आदमी दिखने को एक से दिखते हैं और भीतर से बड़े भिन्न। आदमी ऊपर से दिखने को एक से दिखते हैं पर भीतर से बड़े भिन्न होते हैं, और आप सब प्राणी से भिन्न हैं पर भीतर प्राय समान। बंदर ने फिर बहस की, जब आप अपने प्रतीकों के चिन्हों को ही भोजन नहीं दे सकते, तो अगर स्वयं आराध्य प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर आ रहे हैं तो क्या उन्हें भूखा मारोगे? साधु ने कहा, हम यहां आकर अपने आराध्यों के पुनर्जीवन की कामना नहीं करते, हम यहां आकर अपने आराध्यों के पुनर्जीवन की कामना नहीं करते, हम तो अपने ही आचरण की शुचिता अभिलाषा और संकल्प दृढ़ करते हैं। बंदर ने फिर पूछा, तुम भी हमारी तरह कपड़े नहीं पहने हो, तुम किसके चिन्ह हो? तुम भी हमारी तरह कपड़े नहीं पहने हो, तुम किसके चिन्ह हो? मैं किसी का चिन्ह न हूं न होऊंगा, मैं प्रयत्न में हूं कि मैं स्वयं का सच्चा चिन्ह सिद्ध हो सकूं। मैं प्रयत्न में हूं कि मैं अपनी ब्रह्माश्रित अस्मिता के कोहरे को देखकर अपनी सार्थक परिभाषा की तलाश में जुटा हूं। मैं तुम इन मूर्तियों और अपनी तस्वीरों के चक्कर में मत पड़ो, अपने सत्कर्मों से अपनी विभूति गढ़ो। जानवरों ने ये तमाम बातें सुनी, पर ये सारी बातें उनकी समझ में नहीं आई, पर इतना दुख लगा कि उनकी प्रशंसा में काफी कुछ कहा गया। ये बात है, इसका भगवान आदमी को भी अपनी निशानी तक नहीं बनाना चाहता। ये बाबा फिर कहता है, ये आदमी को अपनी निशानी तक की, भगवान इसका भगवान आदमी को भी अपनी निशानी को नहीं बनाना चाहता। इसीलिए मैं इस आदमी के खून का प्यासा हूं। साथ में कहा, इसीलिए मैं इस आदमी को डसता हूं। तो बंदर ने कहा, इसीलिए मैं भी आदमी पर हंसता।
जो ज्योति सामने खड़े रोशनी भरता, वो देवता जो ज्योतिषा मेरे हृदय में रोशनी भरता, जो सांस बने मेरे हृदय में आता रहा जाता जो जो किसा मैं बंधा जिससे मुझे जो मैं बंधा जिससे मुझे जो मुक्ति का संदेश लो देता वो देवता जो जो किसा जो दूर रह कर भी सदा से साथ मेरे हैं, जो दूर रह कर भी सदा से साथ मेरे हैं, यही
एहसास दीता
जाता रहा वो दिन।